ओम शांति। आज बहुत ही विशेष समय है ये। अभी अभी भाई साहब सभी गन्ने का रस पी कर आए हैं। तन और मन दोनों इनके खुश हो गए हैं। और दूसरी बात, भाई साहब को सामने देखा तो और खुश हो गए। अब इनको पता है कि तन और मन और हमारे ठीक होने वाले हैं। तो सभी एक हाथ की ताली से डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का मुस्कुराकर, हाथ भी हिले पूरा पूरा सब पूरा स्माइल करके, हंसना नहीं, स्माइल करके वेलकम कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा कोई होगा नहीं जो भाई साहब को न जानता हो। फिर भी थोड़ा सा परिचय कराती हूँ। आप बाबा का वो अनन्य रतन हैं जिन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को समन्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। रादर बाबा जो कहते हैं, साइलेंस की साइंस पर विजय होनी है, उससे नवयुग की स्थापना होनी है। तो भाई साहब के द्वारा उस तरह के कई विशेष कर्तव्य किए गए जिनके द्वारा ये पूरे विश्व में सिद्ध हो गया कि विज्ञान की शक्ति से भी बड़ी योग की शक्ति है। तो ये योग बल के द्वारा किस तरह से हार्ट ठीक किए जाते हैं, आप विशेष हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज पर आपने बहुत विशेष रिसर्च किया है राजयोग के नए नए अनुभवों के द्वारा। बाबा से दो विशेष वरदान आपको प्राप्त हैं। एक है मेडिकल साइंस की गहराई में जाकर के नई रिसर्च करने का, दूसरा वरदान आपको मिला राजयोग पर विशेष रिसर्च करने का। दो विशेष वरदान जो बाबा से आपको प्राप्त हुए। दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा ने आपको दिखाया कि राजयोग की शक्ति से ब्लॉक्ड आर्टरीज कैसे ओपन की जा सकती है। तो आपने मेडिकल साइंस को चैलेंज देते हुए नए नए तरीकों के द्वारा, मानसिक शक्तियों के द्वारा, योग बल के द्वारा और लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा कैसे ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोला जा सकता है, इस तरह से आपने मोर देन 7,000 पेशेंट्स ठीक करके पूरे वर्ल्ड के आगे एक रिकॉर्ड स्थापन किया है। और हर साल वर्ल्ड हार्ट कांग्रेस आपके द्वारा होती है जिसमें ऑल वर्ल्ड के बहुत विशिष्ट हृदय रोग विशेषज्ञ आते हैं और दांतों तले अंगुली दबाते हैं कि ये करिश्मा कैसे हो गया। ये केवल ईश्वरीय चमत्कार ही हो सकता है, पर जो वो साइंटिफिकली इन बातों को भाई साहब से समझते हैं तो उसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता का विशेष कार्य हुआ है। इतने अवार्ड्स की आपकी लिस्ट है जो सुनाने लगो तो बहुत लंबी किताब हो जाए। प्रेसिडेंट से भी आपको अवार्ड मिला है, और जब अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे तो वो भी आपके इस प्रोजेक्ट के कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पैटर्न बने, और उन्होंने भी इसको कई जगह वर्णन किया कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग। जब वो पीजीआई चंडीगढ़ में आए तो वहाँ अपने लेक्चर में उन्होंने पूरे 5 मिनट बोला कि ब्रह्मा कुमारी का राजयोग आपके कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करो तो आपके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। तो भाई साहब को उस पर विशेष महारत हासिल है। साथ साथ आप बाबा के बहुत लवली बच्चे हैं। ज्ञान की गहराइयां, योग की ऊंचाइयां, उस पर आप विशेष प्रयोग करते रहते हैं। और आजकल आपकी विशेष रुचि होती है सब जगह स्थान स्थान पर जाकर भट्टियां कराने की, और राजयोग के द्वारा शारीरिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता और अपनी अवस्था के द्वारा व्यवस्थाएं श्रेष्ठ बनाई जा सकती है। इस पर आप विशेष एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कल ही रशिया जा रहे हैं इसलिए आज इस समय क्लास कराने हमारे बीच आए हैं। आज का विषय भी आपने बहुत स्पेशल लिया है, ज्ञान चिता से योग अग्नि। बहुत विशेष विषय है, ज्ञान को चिता बना लो तो योग अग्नि रूप हो जाएगा। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। ज्ञान चिता से योग अग्नि। हमारे सारे भी कर्म विनाश करने के लिए क्या चाहिए? योग अग्नि चाहिए ना। तो वो कैसे प्रज्वलित करें? ऐसी योग अग्नि प्रज्वलित करें जो 63 जन्म जो हमने पाप कर्म किए हैं, किए ना सभी, कोई ऐसा जिसने पाप ना किया हो? सबने पाप किए ना, हम सबने पाप किए है ना। उन पापों को भस्म करने बगैर हम, हमारे उड़ने के पंख नहीं आ सकते। आत्मा के पंख खत्म हो गए ना, आत्मा के जो पंख हैं वो खत्म हो गए, जल गए, टूट गए है ना। आत्मा उड़ नहीं सकती, वापिस परमधाम जा नहीं सकती। बाबा लेने तो आया है, किंतु बाबा के साथ जाएंगे कैसे? कैसे जाएंगे? पंख होंगे तो उड़े जाएंगे ना, अगर पंख नहीं है तो कैसे होगा? तो पंख हमारे जल गए। क्यों जल गए? कामचित्ता के कारण ना। कामचित्ता मन देह दृष्टि है ना। किसी को भी देह भान से देखना ये काम विकार है, राइट? देह की आकर्षण है ना। अगर सिंपल भाषा में काम विकार कहें तो किसी की भी देह की तरफ देखना, उसको देह के भान से देखना, देह भान में आकर के देखना, तो वही काम विकार है। या देह की आकर्षण होना किसी के ऊपर भी, किसी की देह के ऊपर, किसी की विशेषता के ऊपर आकर्षण हो जाना, किसी गुण पे आकर्षण हो जाना, ये भी काम विकार का अंश है। तो ये जो है, हम द्वापर युग से जब से हम गिरे, जब से आत्मा कमजोर हुई, सत्युग में हमारी आत्मा कैसी थी? सत्व प्रधान थी ना। जब परमधाम से उतरे तो हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी, सातों गुणों से भरपूर। सत्व प्रधान माना सातों गुणों से भरपूर थी, 100% चार्ज थी। 16 कला संपूर्ण माना ही क्या है? फुल चार्ज थी। 16 कला माना जैसे 16 कला चांद होता है ना, फुल मून 16 कला है ना, 100%। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे हमारे 8 जन्म हुए सत्युग में, तो हमारी कलाएं कम हो गई, 14 कला हो गए, मतलब हम 75% एनर्जी हो गए त्रेता युग आते आते। और तो आप त्रेता युग खत्म होते होते हमारी एनर्जी 50% हो गई, 50% एनर्जी हो गई। सत्युग त्रेता में आत्मा का राज था, क्योंकि आत्मा के पास सातों गुण भरपूर थे, तो आत्मा बुद्धि को भी नरिश करती थी सातों गुणों से, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, प्रेम सुख आनंद शक्तियों से नरिश करती थी। और बुद्धि भरपूर थी सातों गुणों से, बुद्धि भी सत्व प्रधान थी, मन भी सत्व प्रधान था। आत्मा के पास इतनी एनर्जी थी कि मन की जो हमारी स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, मन में चार बातें होती है ना, स्मृतियां होती हैं, यादें होती हैं, संस्कार होते हैं, और वृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण, और भावनाएं होती हैं, और संकल्प होते हैं, विचार। तो ये चारों विचार जी कैसे थे? मैं सत्व प्रधान, सातों गुणों से भरपूर थी, राइट? और हमारे संस्कार सत्व प्रधान थे। हमारी पांचों कर्मेंद्रियां भी कैसी थी? सत्व प्रधान। आंख भी सत्व प्रधान थी है ना, कान भी सत्व प्रधान, मुख भी सत्व प्रधान, मतलब पूरा हमारा बॉडी के 8 अंग भी सत्व, हर अंग में एक एक सेल में सात्व एनर्जी भरी हुई थी। इसलिए किसी को भी देखते थे, अभी भी देवता के चित्र को देखें या मूर्ति को, हालांकि पत्थर की मूर्ति है, कागज पे बनाई हुई है, तो उसको देख के कैसा लगता है? एनर्जी फील होती है ना। ऐसे ही हम जब देखते थे इसको, अभी जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को नहीं देखते हैं हम लोग, 2 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, उसको देख के भी कैसा लगता है? वो बच्चा जो है उसके अंग अंग से क्या निकलती है? एनर्जी ना, शांति, प्यार, खुशी, आनंद दिखाई देता है। एक थका हुआ फादर अपने घर आता है, या माँ थकी, काम करके थक गई है, उसको देखने मात्र से क्या होती है? फ्रेश हो जाते हैं, हो जाते हैं, नहीं हो जाते फ्रेश? कोई भी थका हुआ आदमी देखे छोटे बच्चे को तो फ्रेश हो जाता है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो आज के बच्चे कहते हैं, बच्चे को महात्मा भी कहते हैं ना, महान आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो सजा खाकर के आई है ना, सत्व प्रधान अवस्था है उसकी, बचपन सत्व प्रधान है ना, तो उसको देख के भी हम फ्रेश हो जाते हैं। सोचो देवी देवताओं का कैसा होता होगा। तो ये आत्मा का भी इतनी एनर्जी थी, त्रेता युग में भी एनर्जी थी, क्योंकि जैसे आत्मा राजा थी, हम स्वराज्य अधिकारी थे, स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार पर, पांचों कर्मेंद्रिय पर, और शरीर के 8 अंगों पर उसका राज्य था, राइट? तभी क्या हुआ, द्वापर युग आया, द्वापर युग जैसे शुरू हुआ, आत्मा की एनर्जी 50% की बजाय क्या हो गई? 49% हो गई। जैसे ही आत्मा की एनर्जी 49% हुई तो क्या हुआ, राजा कौन बन गया? पहले आत्मा राजा थी, अभी राजा कौन बन गया? आत्मा की तीन शक्तियां ना, मन बुद्धि संस्कार, तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? मन। तो प्रधानमंत्री राजा बन गया, और आत्मा की शक्ति कम हो गई तो आत्मा की 49% हो गई। अब आत्मा मन के वश में हो गई, किसके वश में हो गई? आत्मा किसके वश में हो गई? मन के वश में हो गई, राइट। कि वैसे भी पता है कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, एमडी कौन बनता है? जिसके जिसके ज्यादा शेयर्स होते हैं। तो पहले आत्मा के शेयर थे 50 के ऊपर तो आत्मा बजा थी, अभी मन के शेयर हो गए 51% और आत्मा कितने हो गए? 49% है। तो राजा कौन, एमडी कौन बन गया? मन राजा बन गया। तो मन के वश में हुई आत्मा, संस्कार भी मन के वश में और बुद्धि भी मन के वश में हो गई ना, और पांचों कर्मिंद्रिया तो पहले ही, पांचों कर्मिंद्रिया भी मन के वश में हो गई है ना। और आंखों कर्मिंद्र से क्या दिखाई देता है? आंखों से क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देने लगा। आंखें तो पहले भी थी, पहले शरीर दिखाई नहीं देता था, मतलब गुणों में व्यवहार था, सत्य कुत्यता में हमारा गुणों में व्यवहार था। जैसे अब्दुल कलाम साहब थे तो पतले दुबले थे, छोटे कद के, कि तुम उनका चेहरा थोड़े देखते थे, उनके गुण जो उनकी विशेषताएं क्वालिटीज देखते थे ना, इसलिए उनको बड़ा कहते थे, है ना। दादी जानकी जी हैं, कद में छोटी हैं, कि तो हम उनके क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं क्या? उनके गुण देखते हैं ना, उनके अंदर क्वालिटीज देखते हैं, इसलिए वो बड़ी हैं, राइट, है ना। तो इस तरह से हम वो जो है, हम सत्युग में हमारा से गुणों में व्यवहार था, हम गुणों में से प्रभावित थे एक दूसरे से, तो हम शरीर को देखते ही नहीं थे, शरीर पर हमें नजर ही नहीं पड़ती थी। सत्युग त्रेता में हम शरीर के ऊपर हमारी नजर ही नहीं थी, हम बॉडी कॉन्शियस थे ही नहीं, देहवान था ही नहीं, अंश भी नहीं था, विकार तो थे ही नहीं और अंश भी नहीं था। तो पहली बार हमारी नजर चेहरे पर पड़ती है, शरीर पर पड़ती है। जैसे आत्मा की एनर्जी 49% हुई, आंखों से शरीर दिखाई देने लगा, शरीर की बातें सुनाई देने लगती है ना, कान मुख टेस्ट इनमें जाने लगते हैं, तो हम विकार गिर जाते हैं ना। तो अभी मन राजा बन गया, और इसलिए देवता से हम क्या बन गए? मनुष्य। क्या बन गए? मनुष्य बन गए ना। तो मनुष्य बन गए ना मन के वश में, है ना। आत्मा किसके वश में? पहले आत्मा के वश में था मन, तो हम देवी देवता थे, अभी क्या हो गया? अभी मन के वश में हो गया आत्मा भी, बुद्धि भी, संस्कार भी, पांचों कर्मेंद्रिया भी और शरीर भी पूरा। तो हम मन राजा बन, तो मनुष्य बन गए। समझाई मनुष्य क्यों बने, मनुष्य क्यों कहलाए? तो हम मनुष्य बन गए, मन के वश में हो गए। अभी क्या हुआ? क्योंकि मन किसके वश? मन में देहभान आ गया था, है ना, बॉडी कॉन्शियस बॉडी हावी हो गई, तो अब देहभान के कारण पांचों विकार आ गए, है ना। तो पहले पहले तो कौन सा विकार आया? काम विकार। पहले देहभान आया, उसके बाद इमीडिएटली काम विकार आ गया। काम विकार आया तो काम विकार से फिर बाकी का जन्म हुआ, लोभ का जन्म हुआ, मोह का जन्म हुआ, है ना, अभिमान का जन्म हुआ और क्रोध का जन्म हुआ। फिर इनके बहुत सारे बाल बच्चे थे, है ना, उनके भी आगे बाल बच्चे हो गए ना। कौन कौन से? ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, भय, है ना, शक, अनुमान, जल्दीबाजी, सब इसके कारण ही पैदा हुआ, चिंता, है ना, ये सारा इसके कारण पैदा हुआ। तो आज तो बहुत सारी बातें पैदा हो चुकी ना, दूसरों में दोष देखना, बदला लेने की भावना रखना, ऐसे बहुत सारी बातें आज हमारे पास समाज में बहुत सारी बातें फैल गई। तो हम बेसिकली क्या कर रहे थे? आधा कल्प से हम क्या कर रहे थे? इस काम चिता पे जल रहे थे। चिता निरंतर होती, कभी कभी होती है, चिता निरंतर होती, कभी कभी होती है, निरंतर होती है ना। तो हम काम चिता पे लगातार जल रहे थे, दिन में भी रात में भी, मतलब यही विचार, देह को देखते थे, देह के ही संकल्प चलते थे, उसी कारण अलग अलग विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते, उसी कारण चिंता भय पैदा होते, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, है ना। जैसे बताया, पता होगा आपको, एक बार क्रोध करते ना, तीन दिन तक असर रहता है ना। एक बार बदल, किसी से बदलने की भावना रखते हैं, जब तक उसको माफ ना कर दे, हम उस पर जलते ही रहते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं लगे हम जलते रहते हैं, है ना। ऐसे कहां किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो हमारी बुद्धि उसी में लगी रहती है, उसकी बुद्धि हमारे में लगी रहती है, हमारी बुद्धि उसमें लगी रहती है, दिन रात जलते रहते हैं, है ना। नहीं होता ऐसा? चिंता लग जाए कोई बात की, डर हो जाए किसी बात का, तो सारा दिन रात उसी में जलते रहते हैं, तो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी, इसलिए हमें रोग पैदा होते हैं, क्योंकि आत्मा की एनर्जी जल जाती है ना, आत्मा की थोड़ी बहुत एनर्जी वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि बेसिक आज भी यूनिट तो आत्मा ही है। ऐसा नहीं कि मन में शक्ति होती, मन में शक्ति नहीं होती है, आत्मा ही मन को चलाती थी, अब आत्मा की एनर्जी कम हो गई, आत्मा ही कमजोर हो गई, करंट ही कमजोर हो गया, तो क्या होगा? उस करंट से चलता था मन, बुद्धि, संस्कार, उस करंट से आंखों में ज्योति थी, उस करंट से ही सब कुछ चलता था, उस करंट से हार्ट चलता था, उस करंट से सांस आता था, उसी करंट से लीवर काम करता था, उसी करंट से हमारे खाना पचता था, है ना, किडनी काम करती थी। अभी क्या हो गया, वो करंट ही बहुत कम हो गई, तो क्या होगा? तो अंगों में जिस अंग में करंट कम हुई वो अंग बीमार हो गया, जिसमें क्रिटिकल लेवल से थोड़ी कम हो गई, गुजारे लायक तो हुआ था फिर भी चलता रहा, किंतु जिसमें थोड़ा ज्यादा कम हो गई तो वो अंग खराब हो गया। और फिर सब अंगों के आपस में लेन देन तो होती है, एक अंग खराब हुआ तो बाकी अंग भी खराब होने लगे, है ना। जैसे एक पेट सेब की पेटी में एक सेब खराब हो जाए तो क्या होता है, आसपास के सेब भी खराब होने लगते हैं ना, तो ऐसे ही फिर हमारे और भी अंग खराब होने शुरू हो गए। पहले तो कोई कोई बीमार होता था, आज से 1950 साल पहले तो कोई कोई आदमी बीमार होता था, है ना, 100 में से 10 आदमी बीमार हो गए, 15 आदमी बीमार हो गए। और अभी तो अभी क्या हालत है, अभी 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं, है ना। पीछे एक सर्वे हुआ था दिल्ली में चेन्नई में मुंबई और कलकत्ता, 5-4 सिटीज है ना, बड़ी बड़ी सिटीज भारत की, उनमें एक सर्वे किया गया था एडल्ट्स का, तो पाया गया 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। मतलब एवरेज सभी के बाद 2 बीमारी तो है शरीर की, और मन की तो 6-6 सबके अंदर है, 6 मन की और 2 मिनिमम, ये मिनिमम है, इसके ऊपर फिर आगे जितना भी बोनस लगा लो वो लगा सकते हो ना। कोई कोई ऐसे भी इनको 5-6 बीमारियां भी शरीर की हैं, किसी 10-10 बीमारी भी है, जो महारथी होते ना बड़े बड़े, है ना, उनको ज्यादा ज्यादा बीमारी है ना, है जी। आत्मा की बीमारी कारण तो ही हुआ ना, आत्मा की एनर्जी कम होने चाहिए हुआ ना, आत्मा रोगी बन गए ना, आत्मा को 5 रोग लग गए हैं ना। कौन कौन से रोग लग गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रोग लग गया ना आत्मा को, तो आत्मा रोगी बन गई है ना। तो आत्मा को रोगी बनने से फिर सारी बीमारी आ गई, सारी शरीर में बीमारी है, मन भी बीमार, मन में 6 बीमारी और शरीर में 2 बीमारी सबके पास है ना। तो काम चिता हमको ऐसे करते 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 हम यहां आ पहुंचे, अब क्या करें, अभी क्या करें। आई भगवान आ गए, शिव बाबा, भगवान का अर्थ क्या है पता है ना आपको, भगवान किसे कहते हैं, भगवान शब्द क्यों कहते हैं, भगवान शब्द 5 शब्दों से बना है, भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आ आग, ना नीर, है ना। भगवान माना जो 5 तत्वों के से परे है, आत्मा जो है 5 तत्वों के पिंजरे में फंसी हुई है, हम इस शरीर के वश में हैं, हम इस शरीर के अंदर हैं, हम जाए जब चाहे शरीर छोड़ नहीं सकते हैं, इस शरीर रूपी पिंजरे को हम पिंजरे की मैना है ना, हम उड़ता पंछी, वैसे कहने को आत्मा उड़ता पंछी है, किंतु हम क्या फंसे हुए हैं, इस शरीर रूपी जो 5 तत्वों का बना हुआ पिंजरा है उसमें फंसे हुए हैं। और भगवान कौन, परमात्मा कौन है, जो इस पिंजरे के बाहर है, सिर्फ एक वही है जो इस पिंजरे के बाहर है, बाकी सब इस पिंजरे के अंदर है, ठीक है। इसलिए उसको भगवान कहते हैं, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। वो अभी भी जब आता है तो भी मतलब ब्रह्मा के तन में आता है कि तो राजा बन, मतलब वो इसका वश में नहीं आता है, बच्चे बैठे होते हैं, बच्चे कहते हैं अभी ना जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं, बाबा जब आते हैं ना तो बाबा क्या कहते हैं, भाई वहीं बैठ जाते हैं क्या, नहीं बाबा फिर भी चले जाते हैं ना, कितना भी गाना गाओ तो बाबा रुकता है क्या, हाँ कितना भी गाना गा लो तो बाबा तो चला जाता, क्योंकि स्वतंत्र है ना, फ्रीडम है ना उनको, हमको फ्रीडम नहीं है कि हम जब चाहे चले जाएं, ऐसा है क्या, फिर तो कोई ऐसी कोई तो दाखिल ही नहीं होता हॉस्पिटल में ना, थोड़ा तकलीफ हुई छोड़ के भाग जाती है आत्मा ना, है ना, महीना महीना वेंटिलेटर पे रहना पड़ता है ना, महीना दो दो महीना वेंटिलेटर पे रहते हैं, इतना दुख होते हैं, सारे बेड सोर हो जाता है, सारी बॉडी गल जाती है, कैंसर हो जाता है, सभी कैंसर फैल जाता है, फिर भी आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती है ना, आत्मा शरीर में रहती है फिर भी ना, तो जब उसका समय आता है तभी जाती है, 3-3 महीने वेंटिलेटर पे रहकर जाते हैं, ऐसा होता है, सुना होगा ना आपने, हम तो रोज देखते हैं, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, चारों हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, आदमी बहुत दुखी हो जाता है, मरना चाहता है, शरीर छोड़कर भागना चाहता है ये आत्मा, किंतु छोड़ नहीं सकती, किडनी खराब हो जाती है, है ना, रोज डायलिसिस कराना पड़ता है, हफ्ते में 3-4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, तो भी रहना पड़ता है, नहीं रहना पड़ता, रहना पड़ता ना, तो ये जो है आत्मा का। अब शिव बाबा आ गया, शिव बाबा ने क्या किया, शिव बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, ये तो पता है हमको निराकार भगवान है, ये तो हम सब पता है, पर शिव बाबा क्या करता है? शिव बाबा हमको, शिव बाबा की सबसे बड़ी क्वालिटी है, शिव बाबा परम सत्य है ना। शिव बाबा कौन है? परम सत्य। परम सत्य का अर्थ क्या है? शिव बाबा परम सत्य का अर्थ क्या है? परम माना सुप्रीम, राइट, हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट, ऊंचे से ऊंचा, आज की मूल्य में था ना, ऊंचे से ऊंचा है ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो परमात्मा जो है ऊंचे से ऊंचा भगवान है, और परमात्मा जो है हाइएस्ट ऑफ द हाइएस्ट ट्रूथ है, सत्य है। सत्य भी कैसा? ऊंचे से ऊंचा सत्य है। सत्य माना, सत्य की परिभाषा में क्या आता है? सत्य माना दो बातें सत्य में सत्य रहती, सत्य एक तो सत्य वो है जो ना कभी मरता है ना कभी पैदा होता है, ना पैदा होता है ना मरता है, सदा ही है, अविनाशी है, एटर्नल है, राइट, एटर्नल है, वो शाश्वत है। दूसरा, सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। और परमात्मा जो है सदा ही परमात्मा, उसे क्यों कहते हैं परम सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सदा ही सोल कॉन्शियस है, सदा ही आत्माभिमानी है। आत्माएं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है। शिव सदा सत्य माना सदा ही सोल कॉन्शियस है, सदा ही आत्माभिमानी है, अश्रेरी है, विदेही है। तीन बातें हम शिव बाबा के लिए कह सकते हैं, वो आत्माभिमानी है, सदा ही आत्माभिमानी है, सदा ही अश्रेरी है, और सदा ही विदेही है शिव बाबा। तो शिव बाबा सदा ही है, और हम आत्माएं क्या है? आधा कल्प आत्माभिमानी है और आधा कल्प देहाभिमानी। तो आधा कल्प सत्य है और आधा कल्प असत्य है ना, राइट। जब सोल कॉन्शियस है तो सत्य है, और जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते तो असत्य हो जाते, राइट। शिव बाबा सदा सत्य है, और हम आधा कल्प सत्य है, आधा कल्प असत्य है। और शिव बाबा सदा सुंदर है, मतलब शिव बाबा सदा पावन है, सुंदर बना पावन है, और हम क्या है? आधा कल्प सुंदर है और आधा कल्प श्याम है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? श्याम सुंदर, राइट। जब हम श्याम बनते हैं तो शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा की मतलब हम महिमा करें तो शिव बाबा क्या, ये चिंतन हमें करना है। अब कैसे चिंतन करना है? ज्ञान का चिंतन कैसे करना है? ज्ञान का मन, ज्ञान चिता माना, अब हमें जिस ज्ञान, जो ज्ञान हमें मिला है, हमें क्या बात, चार मुख्य बातें मिली है ज्ञान में, क्या क्या मिला उसको मैं नॉर्मली एबीसीडी कह देता हूं ना, एबीसीडी। ए फॉर आत्मा, मतलब हमें सत्य, हम सारे आधा कल्प से अपने को क्या समझ रहे थे? हम अपने को देह समझ के जी रहे थे, है ना, देह के संबंधों में खोए हुए थे, उसी को अपना सब कुछ समझ रहे थे, है ना, अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, है ना, दोस्त, इनको इन्हीं देह के संबंध संपर्क में खोए हुए थे, इन्हीं को सत्य समझ रहे थे, है ना, और देह के पदार्थों में खोए हुए थे, ये बना लो, मकान बना लो, कार ले लो, बैंक बैलेंस कर लो, है ना, इसी में हमारा सारा जीवन बीत रहा था, नहीं बीत रहा था। आधा कल्प से हमने क्या किया? महल बनाए, है ना, बिल्डिंगें बनाई, है ना, चीजें बनाई, सोने हीरे जवाहरात के हमने खजाने जमा किए, है ना, और क्या किया? रोड बनाए, धर्मशालाएं बनाई, किताबें लिखी, ग्रंथ लिख दिए, है ना। तो इसी को समझाता कि हमने यही बढ़िया काम कर रहे हैं ना, हाँ, बस डॉक्टरी पढ़ ली, ये पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, सब इसी ही कर रहे थे। तो हमें सत्य से बेखबर थे हम ना, आधा कल्प से सत्य से बेखबर थे। तो बाबा ने आके हमें सत्य की समझ दी है, ज्ञान माना सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। हमें सत्य आके परम सत्य बाप ने आके हमें क्या किया? सत्य समझाया कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। देह तो जड़ है, देह तो एक दिन पैदा होते एक दिन मर जाती है, और तुम कौन हो? तुम इस देह को चलाने वाली चैतन्य, सत्य चैतन्य आत्मा हो, राइट। शरीर तो पांच तत्वों का बना है, और तुम तो ऊर्जा हो, तुम तो स्पिरिचुअल एनर्जी हो, तुम तो आत्मिक ऊर्जा हो, राइट। शरीर को हम देख सकते हैं, आत्मा को तुम देख नहीं सकते हो। आत्मा तो एक अति अति सूक्ष्म, अतीत अति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु है, इसको भी आंखों से देख नहीं सकते हो, किसी भी तरह से देख नहीं सकते हो, बुद्धि से जान सकते हो, दिव्य बुद्धि के द्वारा जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। कई लोग बहुत कोशिश करते देखने की आत्मा को, यूं आके चढ़ा के ऊपर यूं करके, और फिर आत्मा को यहां विजुलाइज करते हैं देखने, कुछ फायदा नहीं है देखने का, देख ही नहीं सकते हो, है ना। उसको अनुभव कर सकते हो, है ना। जैसे कोई करे गुलाब का फूल में खुशबू आ रही है, अरे भाई गुलाब के फूल में खुशबू तो आ रही है, दिखाई तो नहीं दे रही है ना। अब कोई गुलाब के फूल की खुशबू को देखने की कोशिश करे, उसको इमेजिन करे, विजुलाइज करे, फायदा है कुछ? थोड़ा थोड़ा फायदा है, कुछ फायदा है? ज्यादा खुशबू समझ जाएगी उससे, वैसे खुशबू तो देखने की चीज है, ऐसी आत्मा भी देखने की चीज नहीं है। आत्मा देखने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। जैसे खुशबू अनुभव करने की चीज है ना, ऐसे ही आत्मा को देखने की चीज नहीं है, है ना। फिर लोग, कई लोग कहते हैं हमारा सिर दर्द हो गया, बैठे थे योग करने सिर दर्द हो गया, तुम इतना खींच तान के आत्मा को क्यों देख रहे हो, है ना। जो देखने की चीज ही नहीं है, मतलब ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जा सकता है। मतलब ज्ञान मतलब समझ, सत्य की समझ के तीसरे नेत्र, समझ का नेत्र, बुद्धि का नेत्र, उस नेत्र से इसको देखा जा सकता है, माना जाना जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है। अब आम आपने खाया, आजकल आम खाते हैं ना, अभी गन्ने का रस पिया, अब गन्ने का रस कैसा था? कैसा था? मीठा था। तो मीठा दिखाई दिया आपको उसमें? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मीठा दिखाई दिया होगा ना? नहीं दिखाई दिया। चीनी दिखाई दी उसके अंदर? नहीं दिखाई दी ना। किसने देखी चीनी उसके अंदर? नहीं देखी ना। तो अनुभव की ना, तो अनुभव करने की चीज है। तो बेसिकली क्या है, ये हमें इसको गहराई समझना है। तो ज्ञान का ये चिंतन मनन मन मन रिवाइज करो, जैसे आज की मूल्य हमने सुनी ना, उसको बार बार अंदर मन मन में रिवाइज करो ना। तो ये जो बाबा ने हमें सत्य की समझ दी, फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम ये जो आत्मा है, ये आत्मा यहां बैठ के शरीर को चला रही है। आत्मा के पास तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन सोचने की शक्ति है, मन में खाली सोचने की शक्ति नहीं, मन टीम है, मन में चार बातें टीम है, विचार है, भावनाएं हैं, वृत्ति है और स्मृति है। टीम, थॉट्स, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स, एम फॉर मेमोरीज, राइट। ये चार बातें मन में है। बुद्धि जजमेंट पावर है, बुद्धि में भी चार बातें हैं, कौन कौन सी? बुद्धि में एक तो दिल है, दिल होता है, दिल, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, अंतरात्मा भी कहते हैं इसी को, बुद्धि की तीसरी आंख भी कहते हैं दिल को, कहते हैं नॉर्मली भाषा में कहते हैं दिल, मेरे दिल को दुखी मत करो, है ना, दिल ही तो है, दिल की मानता नहीं, ये वाला दिल नहीं, ये तो बॉडी का दिल है। दिल कौन सा? आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस, जहां पर आत्मा है, सबसे ज्यादा एनर्जी, सातों एनर्जी सबसे ज्यादा वहां पे है, बिल्कुल यहाँ हाइपोथैलेमस के बीच में ना, यहां पर तो आत्मा की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है, जहां सबसे ज्यादा है उसे दिल कहते हैं। इस ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, और इसके आधार पर फिर क्या है, हमारी शक्तियां बनती हैं। जब एक बार हम अतिंद्रिय सुख और आनंद का अनुभव कर लेते हैं, तो फिर उससे क्या बनती है, सत्य को परखने की शक्ति बन जाती है, जिसे विवेक कहते हैं, विजडम कहते हैं, है ना। इसलिए विजडम की थर्ड आई भी कहते हैं ना, थर्ड आई विजडम, है ना। तो सत्य को परखने की शक्ति किस आधार पर बनती है? इस सत्य की समझ के आधार पे, कि हमें समझ आई कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, ये देह नहीं, ये भी आत्मा है, ये मेरी युगल नहीं, ये आत्मा है, ये मेरे माता मां नहीं, ये भी आत्मा है, ये मेरे पिताजी नहीं, ये भी आत्मा है, ये मेरा नौकर नहीं, ये भी कौन है, ये भाई नहीं हमारे घर में काम करने वाली, कौन है? आत्मा है। ये बच्चा नहीं है, कौन है? आत्मा है। ये मेरा बेटा या बेटी नहीं है, ये भी आत्मा है, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गई है, बाबा ने हमको ये समझ दी है, और हम साथ में, और परम हमारा, ये जो हमारे माता पिता, हमारे माता पिता नहीं, ये देखे माता पिता है, एक हमारा माता पिता कौन है? शिव बाबा है। सब आत्माओं का पिता है शिव बाबा, है ना। वो खाली हमारा माता पिता नहीं, हमारे सर्व संबंध उसके साथ है, ये उसने हमें समझ दी है, राइट। सच्चा संबंध ये है, उसने कहा बच्चे तुम्हारा मैं खाली, ये जो मैं खाली माता पिता भी नहीं, तुम्हारा टीचर भी मैं ही हूँ, सतगुरु भी मैं ही हूँ, बंधु भी मैं हूँ, बंधु माना बड़ा भाई, सखा भी मैं हूँ, दोस्त, है ना, साजन भी मैं हूँ, सर्जन भी मैं हूँ, और तुम्हारा बच्चा भी मैं हूँ। तो नो संबंध मुख्य, बाबा ने कहा बच्चे नो के नो संबंध तुमको अनुभव होने चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, उसके एक एक संबंध की गहराई, अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। माँ के संबंध की अनुभूति अलग है, बाप के संबंध की अनुभूति अलग है, प्राप्ति अलग अलग है, सब संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अलग अलग है, राइट। सबके एक जैसे नहीं है, माँ के संबंध से क्या मिला, बाप के संबंध से क्या मिलता है, उसकी अनुभूति क्या है, टीचर के संबंध से क्या मिलता है, उसकी अनुभूति क्या है, प्राप्ति क्या है, है ना। ऐसे ऐसे सतगुरु के संबंध से क्या मिलता है, उसकी प्राप्ति क्या है, बंधु के संबंध से क्या है, सखा के संबंध से क्या है, साजन के संबंध से क्या, सज्जन के संबंध से क्या, बच्चे के संबंध से क्या, ऐसे सभी संबंध है। क्योंकि एक विशेषता बाबा के संबंध की विशेषता क्या है कि बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है और सब जगह है, ये नहीं खाली एक ही जगह पर है। अगर आप जैसे आप चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ आ गए, आपकी मम्मी घर पे है ना, या आपके कोई माता पिता घर पे हैं, है ना, या युगल वहां छोड़ के आयो, बच्चे छोड़ के आयो, तो वो आपके साथ वहां पे अभी संबंध है क्या? अभी तो आप यहाँ आ गए ना घर वाले, तो अब आप संबंध निभा सकते हैं यहाँ से? यहाँ से तो निभा नहीं सकते, किंतु बाबा से हमारा सर्व संबंध है और सब जगह है। हम कहीं पे भी हो, माउंट आबू में हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, बॉम्बे में हो, यूके में हो, यूएसए में हो, रशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी देश में भी हम कहीं चले जाए, किसी जगह भी चले जाए, वहां पर क्या हमारा संबंध? सब जगह नहीं है, और सब समय है, हर समय है, हर समय। घर में अगर आपका संबंध होगा किसी के साथ तो क्या करेंगे वो लोग? थोड़ी देर कर सकते हैं ना आपको, मतलब आपको उस समय आपके साथ वो है नहीं है, ये रात का समय है ना, आप सफर में है, तो संबंध कैसे निभाएंगे, है ना? कि तो बाबा के साथ हमारा संबंध हर जगह और सब हर जगह संबंध, ठीक है। तो ए बी सी, आत्मा बाबा कनेक्शन हो गया संबंध, और ड्रामा। अब ये हमारे माता पिता भाई बहन क्यों बने? आप चंडीगढ़ में क्यों रहते हैं? आप दिल्ली में क्यों नहीं रहते हैं? चंडीगढ़ में क्यों रहते हैं? उसी मोहल्ले में क्यों रहते हैं? उसी सेक्टर में क्यों रहते हैं? सेक्टर 33 में आपका घर क्यों नहीं है? सेंटर के बराबर में आपका घर क्यों नहीं है? मतलब ये सृष्टि रूपी ड्रामा, बाबा कहते हैं बच्चे इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, इस जन्म पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा इस ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है, धर्मराज भी है ना। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ क्या हुआ है? अच्छा हुआ, बुरा हुआ है? सारी प्रॉब्लम यहीं पे है, सारे शरीर की बीमारियां, सारे मन की बीमारियां इसी कारण से है कि अभी तक जो मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उसने मेरी इंसल्ट की, उसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को गालियां दी, उसने मेरे को उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, उसको मैं देख नहीं सकता, है ना, उसको मैं देख नहीं सकती, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती, है ना, नहीं, इसने मेरे 10 लाख वापस लेके मुझे वापस नहीं किए, इसने मेरे प्लॉट पर काबू कर लिया, कब्जा कर लिया, है ना, नहीं ऐसा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सारी बीमारी का कारण यही है, ब्लड प्रेशर का कारण, डायबिटीज का कारण, हार्ट की बीमारी का कारण, आपको सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आपको एसिडिटी होती है, पेट कब्जी रहती है ना, सांस की बीमारी हो गई है, हड्डियां खराब हो गई हैं, डिप्रेशन हो गया, नींद नहीं आती है, स्किजोफ्रेनिया हो गया है ना, क्या क्या कारण है? मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है ना। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे जो हुआ क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि हमने किसी ने मुझे, कोई मेरी इंसल्ट करता रोज, मेरी इंसल्ट बहुत दिनों से करते ही आ रहे हैं, मैं अच्छा ऐसा करता हूं कि तो वो रोज इंसल्ट करते, मुझे खुशी नहीं होते, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में हमने उसकी इंसल्ट की हुई है। अब वो हिसाब किताब, मतलब कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार क्या कर रहे हैं? जितने मैंने मान लीजिए 5 बार इंसर्ट की थी, अब वो कितनी बार करेंगे मेरी इस जन्म में? 500 बार। कितनी बार करेंगे? 500 बार। अभी मैंने एक बार लेटर से मैंने खुद ही हिसाब लगाया। अभी मैंने अपने आप मेरे को कागज पे लिखा भी होगा, मैंने ना 100 रुपये आपने किसी से उधार लेते हैं ना, देखो मैंने 20 लिखा है ना, 100 रुपये से शुरू किया ना, 100 साल पहले मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिया और 100 रुपये का ब्याज लगाया 100 साल का, है ना, 100 साल का ब्याज कितना हुआ? 100 साल का ब्याज बना 34,79,04,000 रुपया, है ना, یہ میں لگا کے دیکھتا ہوں جی, ریٹ آف انٹرسٹ ہے جی. سنو میں بتاتا ہوں ریٹ کا, ریٹ بتاتا ہوں, ریٹ آپ کو بتاتا ہوں ریٹ. سنو ریٹ, ابھی تو ریٹ کم ہو گئے. 1917 سے 1947 تک 3 سال میں پیسہ ڈبل ہوتا تھا, ہے نا, 3 سال میں. آپ پوچھ لینا کسی سی اے پرانے چارٹرڈ اکاؤنٹ بتائیں گے. اور 1947 سے 1967 تک 4 سال میں پیسہ ڈبل ہوتا تھا. 67 سے 87 تک 5 سال میں پیسہ ڈبل ہوتا تھا. 87 سے لے کے اور 2017 تک 30 سال ہو گئے نا, اس میں جو ہے کبھی 7 سال 8 سال 9 سال میں پیسہ. ابھی ریٹ کم ہو گیا تو اس لیے تو آپ ریٹ اسی حساب سے ریٹ لگایا میں نے نا. 1987 تک بنتا ہے 2,18,44,000 ہے نا, ہے نا, 87 تک. اس کے بعد بن گیا 34,79,00,000. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لو کتنا بیاج ہوتا ہے. ابھی آپ کو وہ بچہ بن کے آئے گا آپ کا 100 سال کے بعد, کہتے ہیں گیت ہے نا, 100 سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا نا. تو کچھ نہ کچھ تو بن کے آئے گا نا, بچہ بن کے آئے گا, کچھ ماں بن کے آئے گا, وائف بن کے آئے گا, کچھ نہ کچھ تو بن کے آئے گا, پتی بن کے آئے گا نا, کوئی بزنس پارٹنر بن کے آئے گا نا. اب وہ کیا کرے گا بتاؤ, آپ کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا 100 روپیہ واپس کرو, بولے گا تو نہیں, پر ہم کو دینا پڑے گا, ساتھ میں بیاج. کہ بیاج کتنا؟ 34 کروڑ. اب 34 کروڑ آپ نے اس کو پڑھائی لکھائی پڑھا دو بچے کو, 2 کروڑ خرچ کرو, 5 کروڑ خرچ کر لیا, اب وہ خوش ہو جائے گا کیا؟ 5 کروڑ خرچ کرنے کے بعد کیا کہے گا؟ 29 کروڑ واپس کرو. اور ابھی تو آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا مرضی کرتے خوش ہوتے ہیں کیا؟ کوئی پتی کے اپنی پتنی سے خوش ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے خوش؟ کوئی پتنی اپنے پتی سے خوش ہوتی ہے کیا؟ کوئی بچے ماتا پتا سے خوش ہوتے ہیں کیا؟ ماں باپ بچوں سے خوش ہوتے ہیں کیا؟ یہ بیاج ہے, یہ پچھلے جنم کا لینا دینا باقی ہے, اتنا بیاج دیا ہوا ہے. انسلٹ روز ہوتی ہے نا, ہاتھ جوڑ کے انسلٹ سویکار کرنی پڑتی ہے, نہیں کرو گے تو ڈبل پینلٹی لگ کے ڈبل ہو جاتا ہے. سنا آپ نے؟ وہ پھر اور زیادہ ہوتی ہے, اور زیادہ اور زیادہ. ایک گالی ملتی ہے آپ کو, روز گالی دیتے ہیں نا, صبح شام مطلب آپ نے 5 گالی دی ہوں گی پچھلے جنم میں, اب آپ کو اس جنم میں کتنی گالی ملیں گی؟ آپ سوچو کتنی ملے گی, سوچو 500 کیا پتا کتنی ملیں گی. گنو مت آپ نا, چپ چاپ سہتے چلو, سہن کر کے سماتے چلو. تو آپ کا حساب, تو اس میں چپ بولنے کا سمے ہے نہیں, اندر 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 چتا پہ رہنے کا, چتا میں نا چنتن میں رہنے کا, اسی منن چنتن منتھن جو بابا نے مرلی چلائی, جیسے آج کی مرلی چلائی, بچے دہی مانی بنو, باپ کی شریمت کیا کہتے, دہی مانی بنو, ہے نا, باپ کو یاد کرو, نرنتر باپ کو یاد کرو, ہے نا. تو جیسے بابا نے کہا آج پاون بننے کی بات کی, سارا دن سے گہرائی میں منن ریوائز کرو, چنتن من گہرائی میں جاؤ, منتھن اس سے بابا سے پوچھو, بابا سے جڑ جاؤ منن کرتے کرتے, بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں پاون کیسے رہوں, پاون کا اتنا گہرا مطلب ہے, ہم تھوڑا بات کرتے ہیں پاون کے, پاون کے بارے میں, تو کیسے میں کتنا کیسے بنوں گا بابا, 63 جنموں کے پاپ ہے, اس کو کیسے کیسے ختم کروں, ہے نا. پاون کا مطلب پورے 63 جنم کے پاپ کرم ختم کر دیے, وہ پاون تبھی بنے گا نا, تبھی ہماری کمپلیٹ سٹیج بنے گی. تو آپ دیکھو کتنا مجھے اس میں بولنے کا سمے ہے ہی نہیں, صرف سننے کا سمے ہے, رائٹ. میں جو کوئی کچھ کر دے, سپوز 10 لاکھ کسی نے واپس لے لیا, ہم سے لیا ادھار لے لیا, پھر واپس نہیں کر رہا, تو کیا کرو؟ کورٹ کیس کرو گے؟ کورٹ کیس کرو گے تو پیسے تو واپس ملے گے نہیں. دس لاکھ نے کھا لیا, اس کو وکیل کو 10 لاکھ اور دینے پڑیں گے, اور اس کے بعد تم کورٹ کے سہار جاؤ گے, 20 سال کے بعد کورٹ کے سہار ہو گے, ٹھیک ہے. اور کورٹ میں جانا الگ, ٹینشن الگ, گرمی میں دھوپ میں جا کے کورٹ میں کھڑے رہو, آپ کی تاریخ لگے گی نہیں, کورٹ بیاج وہ کہے گا نہیں, ڈیٹ پوسٹ پون, ہے نا. تو کیا کیا آپ نے؟ پینلٹی لگائی نہیں لگائی؟ کیونکہ وہ آپ کو دینے والا نہیں ہے, وہ پیار سے دیتا ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو کوئی حرجہ نہیں ہے. تو جو ہوا پکا, ابھی کورٹ کیس واپس کر لینا جا کے, ہے نا, بدھی اتنی جاتی ہے نا, سارا ٹائم کورٹ کیس میں جاتی رہتی ہے بدھی نا. تو جو ہوا اچھا ہوا پکا, کیونکہ ہمارا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک سنکلپ, ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے, یہی ہمارا خزانہ ہے, برہمنوں کا یہی خزانہ ہے, سنگم کا سمے کا ایک ایک سنکلپ, ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. एक एक सेकंड हमारा कितना कीमती है। हमारा वारिस क्वालिटी आत्मा की निशानी है कि उसका एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प बाबा की याद में, बाबा की सेवा में जाता है। तो ये हमें देखना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बाबा की गोद में है। ब्राह्मण माना ही बाबा की गोद में, ब्राह्मण माना ही बाबा की गोद में। हम छोटे बच्चे हैं ना, तो बाबा की गोद में बैठे निरंतर, आप उसे महसूस करो, है ना। और जो होने वाला है वो बहुत सबसे अच्छा होना, क्योंकि अभी अभी तक हमने जो हमें जो सजा मिल रही है, इंसल्ट हो रही है, पाप जो भी हमें, क्योंकि हमने बेसमझी में हमने बोला हुआ है, बेसमझी में किसी की इंसल्ट की हुई है, बेसमझी में किसी को गाली दी हुई है, बेसमझी में हमने मिसट्रीट किया हुआ है, बेसमझी में उधार लेके वापस नहीं किया हुआ है, राइट। हमने सोचा हम खा लिया हमने उसका पैसा, किंतु अभी वापस ब्याज के साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वो खाली नहीं जाए कुछ भी, तो हमको वो देना ही पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? हर चीज सोच समझ के कर रहे हैं, हर चीज सोच, हर एक एक संकल्प हम सोच के करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, बाबा से पूछ के करते हैं, बाबा की श्रीमत पे करते हैं। तो जैसा बीज वैसा फल। अब बीज हमारा अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा, सबसे अच्छा होने वाला। तो ये जो है जितना इस एबीसीडी का मनन चिंतन मंथन, मतलब हाथ की मुंडी जैसे है, एक एक लाइन, आज का वरदान, आज का स्लोगन, आज के जो बाबा ने कहा ना कैसे हमें क्या करना है, मतलब हमें ज्ञान का ही मनन चिंतन सारा दिन करते रहना, सारी पढ़ाई पे पूरा टेंशन हमें रखनी है। तकदीर कैसे जगेगी? इस पढ़ाई से तकदीर जगती है। तो ज्ञान का सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मनन चिंतन मंथन सिमरन, मंथन में जब मक्खन निकला ना जो, उसको फिर कार्य में लगाओ। याद रखो कि बाबा ने आज ये कहा था, मुझे ऐसे कार्य में लगाना है, मुझे ऐसे कार्य में लगाना। हर कार्य करते उसमें स्मृति रहे, उस स्मृति में रहकर कर्म करो कि मुझे जैसे मीठा बोलना है तो मीठा बोलना है ना। सबको आत्मा देखना है तो आत्मा देखना है ना, राइट। मतलब मुझे बार बार जो बाबा की जैसे मुरली का जैसे नहीं समझ आती, नहीं याद आ रही मुरली के पॉइंट, तुरंत निकाल के देख लो बाबा ने आज क्या कहा, है ना। विचित्र बाप को याद करना है, कैसे बाबा ने आज क्या कहा। बुद्धि को रोज ज्ञान का भोजन दे, शक्तिशाली बनाना है। आज बाबा ने कहा बुद्धि को कैसे बनाओ, जिनके माफिक बना दो, जिनके माफिक बना, इतनी शक्तिशाली बनाओ कि वो ऊपर नीचे होती रहे ना, कभी परम धाम कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम कभी सूक्ष्म वतन, कभी बॉडी में कभी ऊपर, आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, है ना। तो ऐसे बार बार कभी सुख धाम में चले जाए, निरंतर सारा दिन इसी का अभ्यास करते हो। तो जितना जैसे यही योग से बुद्धि रूपी बर्तन को पावन बनाना, पवित्र बनाओ, तो मतलब जितना सारा दिन हमारे जो बाबा की जो मुरली की एक एक लाइन, अच्छा बाबा की जो मुरली की एक एक लाइन है ना, जो इसमें इसमें जो एक एक महावाक्य है, इसमें बहुत गुह्यता है। सात बातें मैं यदि छह बातें कहता हूँ कि छह बातें हर महावाक्य में, एक तो गुहिया माना बहुत गहराई है, सिंपल नहीं है वो, एक एक लाइन का हमें मनन करना है। मैं जैसे खाना हम खाते ना, खाना चबाया, फिर चबा के इसमें यहाँ जूस मिलता है खाने में, लार मिलती है, और फिर हमारे पेट में जाके एसिड मिलता है, फिर और एंजाइम्स मिलते हैं, फिर उसमें आगे जाता है तो फिर उसमें हाथों में जूस होते हैं पचाने वाले जूस, फिर लीवर के जूस आके उसमें मिलते हैं, फिर पैनक्रियास से जूस आके मिलते हैं, फिर हाथों के और जूस आके जाके मिलते हैं, फिर उसका खूब मंथन होता है ना, और फिर जाकर के उसका फिर वो पचता है, पच के फिर खून में जाता है, और खून में जाके फिर हड्डियों में जाता है, फिर हड्डियों में जो खून बनता है, हड्डियों में खून का निर्माण होता है, तब जाके हमें ताकत मिलती है। खाने से खाली तो ताकत थोड़ी ना मिलती है। हमने मुरली सुन ली, दैट इज नॉट एनफ, है ना। मुरली सुन के फिर हमने खा ली, खाना खा लिया, पचाई नहीं, ताकत थोड़ी ना आएगी, उसको हमें पचाना भी तो है ना। तो ये ज्ञान चिता का मतलब क्या है? ज्ञान चिता माना ज्ञान का निरंतर मनन चिंतन सिमरण मंथन करते रहो, मनन चिंतन मंथन और सिमरण करते रहो सुबह शाम, मतलब सुबह शाम के सारा दिन श्वास श्वास। आप कहेंगे हम क्या खाली काम छोड़ दें क्या, काम धंधा छोड़ दें क्या? हमारा काम होता है जब नौकरी पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो ये काम छोड़ दें क्या? छोड़ दें तो मनन चिंतन मंथन ऐसे हो जाएगा, बैठे बैठे काम करते करते भी हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो सकता है। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं नॉर्मली, हम क्या कर रहे हैं, 30 विचार हमारे एक मिनट में चल रहे हैं और काम हमारा एक भी नहीं होता है। 30 विचार एक मिनट में, उसमें से 26 विचार हमारे, 25 विचार सब कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, मतलब पास से आ रहे हैं, भविष्य से आ रहे हैं। सिर्फ 5 विचार कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, सिर्फ 5 विचार, वो 5 विचार हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो 25 विचार तो वेस्ट है ना, उसका मतलब ही नहीं है। जब हम मनन चिंतन मंथन स्मरण करेंगे तो आपके मनन चिंतन करने से, बाबा की मुरली को पढ़ने से, बार बार रिवाइज करने से क्या होगा, आपके विचार 5 ही रह जाएंगे, 25 विचार बंद हो जाएंगे, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे घर में खाना बना रहे हैं, चाहे कपड़े धो रहे हैं, जो मर्जी काम कर रहे हैं, आपका कोई काम ब्लॉक नहीं होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं, बीच बीच में मुरली का एक पॉइंट निकाल लिया, उसको गहराई से उसकी गहराई में जाते हैं, बाबा ने क्या कहा, कैसे कहा, कैसे मैं प्रैक्टिस करूं इस बात को, एक एक लाइन को हम देखें ना, हर लाइन में गुह्यता है, हर लाइन में राज है, राज में कई सीक्रेट्स हैं, कई किसमें कई सस्पेंस भी हैं, रहस्य भी हैं, और महीनता बहुत है, बहुत महीन बातें हैं, मतलब ऐसे नहीं कि स्थूल बातें नहीं है, महीन बातें हैं और सूक्ष्म भी है, कई सूक्ष्म बातें हैं, और फिर अमूल्य तो हर एक पॉइंट है, लाखों रुपए का, जैसे कहते बाबा कहते ना, ये तो 65 की बात है, अब उस समय के लाख तो करोड़ों हो गए ना, तो इस समय अभी करोड़ रुपए का है ना, एक एक, एक, एक महावाक्य, तो इसको बहुत गहराई से, बहुत बहुत गहराई से, मुरली तो मैं कहता हूं हमेशा हर ब्राह्मण को उसकी जेब में रहनी चाहिए, जेब में ही रहनी चाहिए, ताकि जैसे लव लेटर कहते ना इसको, तो ये बाबा का हमारे हम आत्माओं के लिए, बाबा कौन है हमारा साजन, ये देखो ना, आत्मा को हमें आत्मा कैसे कहते हैं, परमात्मा कहता है, और आत्मा क्या होती है, आत्मा क्या बोलते हैं, आत्मा कभी कहता है दिखते हैं क्या, आत्मा कहती है, अगर आत्मा प्रमाण संबंध वैसे भी कैसे है, परमात्मा साजन है और आत्मा ये सब क्या है, सजनी है, तो हम सजनी को किसका क्या है उसका, और वो लव लेटर रोज रोज मिलता है हमको, रोज मिलता है, कभी कभी मिलता है, ऐसा साजन कोई हो जो अपनी पत्नी को रोज लव लेटर लिखे, है ना, वो हमको रोज लव लेटर भेजता है, और सजनी क्या करती है, एक बार सुबह सुनती है, बाकी साजन भूल जाती है, हमारी सजनियां बाबा की सजनियां ऐसी है ना, तो जन्म जन्म का प्यार है, कितने सालों बाद साजन मिला है ना, तो क्या करना चाहिए, लव लेटर कहां रखना चाहिए, दिल के पास रखते ना, और साजन कैसे पढ़ना चाहिए, आस पास देखा कोई नहीं है, तुरंत निकाला, चुपचाप एक लाइन पढ़ी, तुरंत छुपा लो, है ना, देखो सामने से कोई आ रहा है फिर छुपा लो, फिर अंदर सोचते रहो मेरे साजन मुझे मेरे लिए क्या बोलता है ना, उसी में खोए रहो, है ना, फिर दोबारा से देखा मौका लगा फिर निकालो, दिन में 50-60 बार पढ़ना चाहिए, कितने बार पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन तो निकालो, एक एक 3-4 बार तो पूरा पढ़ो, 4 बार तो पूरा पढ़ो, एक बार सुबह पढ़ते हैं हम लोग, अमृत वेला योग करते ही पढ़ते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर मुरली सुनने के बाद जब वॉकिंग कर रहे हैं फिर दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार, फिर चौथी बार हम लोग शाम को खाना खाते हैं उसके पहले पढ़ते हैं, और फिर रात को सोने के टाइम 5 बार हम तो रेगुलर पूरी पढ़ते हैं, और दिन में फिर बार 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 पढ़ते हैं, एक एक लाइन एक एक लाइन एक एक लाइन, उसको अनुभव करते हैं, ठीक है, करेंगे सभी ऐसे, क्या ख्याल है, टाइम नहीं ना, इतना टाइम कहां से लाएंगे, है ना, टाइम लाएंगे, आशिक मशा जी एक ही लाइन पढ़ सकते ना, तो आशिक मशू कैसे होते हैं, वो कहते इतना टाइम कहां से लाएंगे, मैं तुमको कैसे याद करूंगी, है ना, वो मशूक कहता है मैं तुमको कैसे याद करूंगा, टाइम ही नहीं, मैं तो बहुत बिजी रहता हूं ना, है ना, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, हर काम करते वो याद सताती रहती है, काम भले करते रहते हैं किसी याद सताती है, और जितने भी आपके संबंधी ना, अभी एक्चुअली क्या हुआ, बेसिक प्रॉब्लम होता है क्या, हमारी प्रॉब्लम क्या हुई, ये 4 स्टेजेस होती हैं, अभी पहली बात है उपराम वृत्ति, है ना, अभी अंदर से देखना क्या, अभी हमको ये धुन होनी चाहिए, अब घर जाना है ना, ये धुन लग जानी चाहिए, अब घर जाना है, ने? खाली हमें घर नहीं जाना है, सबको भी घर साथ वापस घर ले जाना है, शिव बाबा सबको साथ घर ले जाने आया, नहीं आया, सबको ले जाने के लिए आया, और हम हमारा बाबा हमको ले जाने के लिए आया, हम क्या कहते, नहीं हम तो अभी थोड़ा, बाबा के नहीं हमें ड्यूटी दी, बच्चे तुम्हें तो चलना ही है पावन बन के, साथ साथ सबको ले जाना है, जब अब घर जाने का समय आ चुका है, हमें जाना है, पक्की बात है, गारंटी पे कोई भी मतलब दोराय हो सकती है क्या, अब जाना है और सबको लेके भी जाना है, निमित्त कौन ले जाने के लिए, शिव बाबा तो है कि तो हम उसके बच्चे भी साथ में ले जाने के निमित्त है, सबको ले जाना है, तो इसमें कुछ रहना नहीं है, निशरी भी रहना नहीं है, देह के संबंध भी नहीं रहने, पदार्थ भी नहीं रहने, ये दुनिया भी रहने वाली नहीं है, और ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सिक्के हैं ना, जो अभी सिक्के हैं ना, आज दुनिया किससे चल रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के सिक्कों से चल रही है, रेजगारी भी है, चिंता भय की रेजगारी है, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्षा द्वेष की रेजगारी है ना, इसको भी देखा के हम काम चलाते हैं। रेजगारी समझते ना, चेन, क्या बोलते हैं उसको, चिल्लर है ना, चिल्लर ये है, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्षा द्वेष शक अनुमान, जिसको शक शक जला के देखो तुम्हारे खिलाफ ये कुछ कर रहा है, वो मेरे साथ मेरा दोस्त बन जाता है ना, ये मेरा अच्छा दोस्त है ना, किसी को दूसरे में दोष बता के देखो उसके अंदर ये खराबी है ना, उसको फिर दोस्त बना लेते हैं ना, उसके उसकी हेल्प लेते हैं, उसको उसके खिलाफ भड़का देते हैं ना, तो कहते राम कर लो ना, राम कर लो, राम कर लो, उससे अपने कहते मेरा बहुत हितैषी है, चलो सो जाते, सो जाओ, बहुत काम कर ले, सो जाओ, सो जाओ, है ना। तो आलस के कारण हम दोस्त बनाते हैं ना, दूसरे की मदद लेते हैं, केयरलेस, क्या इतनी जल्दी करने की क्या बात है, आराम से करेंगे ना, तो अलबेलेपन कारण हमारे दोस्त बनते हैं, ये सिक्के हैं आजकल के, चेन है, चिलर है। तो ये काम विकार, ये रुपया है, बड़े बड़े रुपया, कोई 100 रुपए का नोट है, कोई 500 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है ना, काम विकार 2000 रुपए का नोट है ना, है ना, क्रोध 500 रुपए का नोट है ना, या 1000 का नोट है, लोभ 500 रुपए का नोट है ना, मोह 200 रुपए का नोट है, और अहंकार 100 रुपए का नोट है ना, तो ये अलग अलग नोट चल रहे हैं ना मार्केट में ना, तो ये नोट, ये हमारे ये इस समय इसी की बिजनेस है, और ये करेंसी बंद होने वाली है, ये शिव बाबा ने हमको एडवांस में बता दिया है। जैसे भी हुआ था ना 8 नवंबर को 2015 में ना डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो आज वो नोट काम आते हैं क्या, अभी ऐसी दुनिया आने वाली इसमें नोट चलेंगे नहीं, कौन से नोट चलेंगे, पवित्रता के, शांति के, प्यार के, खुशी के, आनंद के, शक्तियों के, मधुरता के, संतुष्टता के, हर्षित मुक्ता के नोट चलेंगे, धैर्यता के, है ना, नहीं, एकाग्रता के, दृढ़ता के, है ना, ये वाले नोट चलेंगे, ये सिक्के चलने वाले, ये नोट तो चलना ही बंद हो जाएंगे, फिर क्या करोगे, ये नोट इकट्ठे अभी भी इकट्ठे कर रहे हो, है ना, घर में लगा के माताएं बहनें इकट्ठा कट कर काम आएंगे, मोह इकट्ठा करे जा रहे हैं, मोह कट्ठा, बेटा तेरे बगैर तो रह नहीं सकती मैं, तू ऐसे कर ले, बेटी तुम ऐसे कर लो, आदमी अपनी औरत को बोल रहा है तुम्हारे बगैर तो एक मैं जी नहीं सकता मैं, है ना, अभी ज्ञान में आने के बाद बोलते हैं ऐसे, है ना, ज्ञान में आने के बाद भी बोलते हैं, कई मैंने सुना है ना, बच्चे माँ बाप को बोलते हैं, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, क्या ख्याल है, एक करेंसी इकट्ठी करनी है, अभी भी करनी है क्या, हाँ, अभी कौन सी करेंसी काम आएगी, हाँ? ये ज्ञान की करेंसी काम आने वाली है, नहीं तो जितना मनन चिंतन करते जाओगे करेंसी बनाते जाओगे, ये करेंसी बनेगी तो फिर लकड़ी लाएंगे ना जलाने के लिए, नहीं कब लकड़ी, बिना पैसे लकड़ी मिलती है क्या, मिलती है नहीं मिलती ना, तो जब इतनी ज्ञान चिंता इसमें ज्ञान में मनन चिंतन में खो जाएंगे ना, तब हमारी लगन की अग्नि, मतलब पहले लगन की अग्नि कब जागृत होगी, लगन की अग्नि तब जागृत होगी, देखो कोई भी हिसाब किताब हो इस जन्म का पिछले जन्म का, बिना लगन की अग्नि के भस्म नहीं हो सकता, और भस्म भी क्या होने वाला है ये भी ध्यान रहे, कहीं ये भी सोच लेते कहीं हम तो खूब योग कर रहे हैं, हमारे क्यों बीमारी आ रही है हमको, ये तो पहले कुछ भी नहीं था, ब्लड प्रेशर भी नहीं था, डायबिटीज भी नहीं थी, हार्ट की बीमारी भी नहीं थी, ये ज्ञान में चलने के बाद ब्लड प्रेशर भी आ गया, डायबिटीज भी आ गई, हार्ट की बीमारी भी आ गई, इस कारण नहीं आई, आप अभी बूढ़े हो गए हो, ठीक है ना, जब आप ज्ञान में 25 साल के थे अभी आप 55 साल के हुए, है ना, तो उम्र के कारण आपकी बीमारी आई ना, वो तो पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब किताब आया, और कर्मों का हिसाब किताब क्या आया कि अभी भी मतलब योग से क्या होता है, सिर्फ ब्याज माफ होता है, क्या माफ होता है, मूलधन माफ नहीं होता कभी भी, वो 100 रुपया जो लिया था वापस करना ही पड़ेगा, 5 गाली दी थी, 5 गाली तो मिलेंगी, हाँ 500 नहीं मिलेंगी, सुना, पर अभी समझ आ गई है इसलिए 5 गाली आराम से पचा लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी बाबा के जितनी श्रीमत पे चलेंगे, एक्यूरेट ज्ञान चिता पे रहेंगे, इसका ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते जाएंगे, उतना हमारी क्या होगी, योग अग्नि मन, अब बाबा की तरफ हमारी उपराम वृत्ति बनती जाएगी, ज्ञान मन सत्य की समझ आ गई कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला सबसे अच्छा, तो हम साक्षी दृष्टा बनते जा रहे हैं, उपराम होते जा रहे हैं, अनासक्त वृत्ति होती जा रही है, क्योंकि अब त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर हर कार्य कर रहे हैं, त्रिनेत्री बाबा ने हमें तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया, समझ का नेत्र दिया, और त्रिकालदर्शी बना दिया, तीनों कालों को देखो, अभी तुम गुलाब जामुन खा रहे हो, डायबिटीज की बीमारी है, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कल तुम हॉस्पिटल में दाखिल होगे, आज डायबिटीज है, गुलाब जामुन खाया, अभी थोड़ी देर के बाद अस्पताल में दाखिल, है ना, क्या ख्याल है? आपको हार्ट की बीमारी है, अभी पकोड़े खाओ, समोसा खाओ, थोड़ी देर में छाती में दर्द होगा, अस्पताल में दाखिल, ठीक है? 50,000 का बिल, समोसा 5 रुपए का, और अस्पताल का बिल कितने का? 50,000 का, ठीक है? समझ आई? काल दक्ष का मतलब समझ में आया आपको, है ना? एसिडिटी, पेट में अल्सर है, खाओ चटपटी चटनी, गुलाब वो क्या बोलते, पानी पूरी खाओ, है ना, है ना, क्या होगा थोड़ी देर में, फिर अल्सर खराब हो जाएगा ज्यादा, ना, फिर दवाई खानी पड़ेगी ज्यादा, इंजेक्शन लगेंगे ना। तो इस तरह से हम जब अपने आप को गहराई से त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर जब हम चलेंगे ना? तो हमारी उपराम वृत्ति और अपने आप ही खाने पीने से भी, देखने से भी, पढ़ने से भी, सुनने से भी, बोलने से भी, खाने से, हर चीज से हमारी उपराम वृत्ति होगी। जब उपराम वृत्ति होगी, अनासक्त वृत्ति होगी ना, फिर अनासक्त हो जाएगी, जितना जरूरी है 2 चपाती खानी सुबह शाम, ऐसे ऐसी आदत होनी चाहिए, सिंपल 2 चपाती सुबह दोपहर शाम खा ली, बस एक सब्जी, 2-3 सब्जी के साथ नहीं, 1 सब्जी के साथ, है ना, भले आपके घर में बहुत पैसे हैं, फिर भी 1 सब्जी के साथ रोटी खानी शुरू करो, है ना, 2-3 सब्जी के साथ नहीं, है ना, क्योंकि अंत में फिर मिलेगी नहीं, अंत में याद आएगी, फिर क्या होगा, भगवान की बजाय वो सब्जियां याद आएंगी, है ना, है ना। तो अनासक्त वृत्ति से खाओ, थोड़ा सा, वो भी स्वाद के वशों के नहीं खाओ, क्या जो रोटी बहुत अच्छी बनी है, सब्जी बहुत अच्छी, ज्यादा खा लो, नहीं, अपनी आदत ऐसी डालो, है ना? जैसे हम लोग की फिक्स है, हम लोग रोज सुबह कितने सालों से अंकुरित ही खाते हैं, सुबह अंकुरित और दलिया, बस पक्का फिक्स है, 365 दिन में 365 दिन, है ना, 11 बजे फल खाते हैं, फल खा लिया, मैं आपके पास आया, फल खा के आया, है ना, अब लंच करेंगे, इसबगोल खाएंगे, सब्जी रोटी, रात खाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, थोड़ी दाल खाएंगे, है ना, फिर 4 बजे फल खाएंगे, और शाम को 6 बजे खाना खाएंगे, सब्जी रोटी खाएंगे बस, और 9 बजे कप दूध पियेंगे, मैं जरूरी कोई और फालतू चीज चाहिए भी नहीं, अच्छा नहीं, नहीं कुछ खाने को मिला तो कोई बात नहीं, हर्जा नहीं, मतलब ऐसी अपनी ऐसी नेचर बनाओ, अनासक्त वृत्ति और उपराम वृत्ति, क्योंकि अब घर जाना वापस, अंत में कुछ खाने पीने को हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, सूक्ष्म में तो खाएंगे हम लोग, है ना, ठीक है, क्योंकि यहां अवेलेबल नहीं होगा, थोड़ी बहुत दाल रोटी मिलेगी, वो भी थोड़ी सी, एक रोटी थोड़ी मिल जाएगी, एक रोटी और दाल मिल जाएगी, 4 रोटी नहीं मिलेंगी, है ना, तो एक रोटी, जितनी जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी ना, उतनी आपकी फिजिकल एनर्जी की आवश्यकता कम होगी। हमारी दादी है, दादी जानकी है, जैसे ये दादी रत्नमोहिनी है, या दो और भी दादी, ईशु दादी, कितना रोटी खाएगी, 1 चपाती खाती है, इतनी पतली सी गोल सी चपाती होती है, गुजराती चपाती, एक खाएगी मुश्किल से ना, 1 चपाती सुबह, 1 दोपहर, शाम को थोड़ा पपीता खा लेंगे, बस कितना, कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरीज हो गई, 400 कैलोरीज भी नहीं बनती, मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, मेडिकल साइंस के अनुसार जीने के लिए 1200 कैलोरी कम से कम चाहिए, तो दादियां क्या 400-500 कैलोरी में काम चला रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत है, जितनी जितनी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आत्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, जितना जितना ज्ञान की समझ बढ़ेगी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखान शक्तियां बढ़ेंगी, उतना उतना क्या होगा हमारे अंदर, क्या होगा, हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और अंत में तो फिजिकल रिक्वायरमेंट ना के बराबर रहेगी, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, इतना सा खा लेंगे, जैसे भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, हनुमान जी को भोग क्या लगाते हो, अगर हनुमान जी को पूरी की पूरी आपकी बूंदी खा जाए तो हनुमान को भोग लगाएगा, मुझे बताओ, खाएगा कोई भोग नहीं लगाएगा, सारी बूंदी खा गए वो तो, है ना, एक मुश्त मुंह पे दाना लगाया, बाकी खुद खाते सारे में, तो अभी हम देवी देवता बनने वाले तो हम कैसे कितना ही खाएंगे, इतना ही तो खाएंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, क्या ख्याल है, 1 चपाती होगी तो उसमें चलो भी 4 जनों ने टुकड़े करके खा लिया, चलो हो गया, पेट भर गया, भोग लगाने की माफी खाएंगे ना, तो ऐसी स्थिति बनाओ, ठीक है, बनाएंगे ऐसे, जब उपराम वृत्ति नष्ट तो बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, देह, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, इनसे हमारी बेहद की, अब ये छोड़ने हैं, देह भी छोड़ के जाना है, कितनी बार मरने की कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं बताओ, जो मरने की प्रैक्टिस करते हैं रोज हाथ उठाओ, दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, बार बार छह छोड़ के जाने की ना, अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं ना, तो रिहर्सल होनी चाहिए हमारी, बार बार मैं कोशिश करता, मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूं, अभी मैं आत्मा शरीर छोड़ के जा रही हूं, ठीक है, ये सब शरीर मर गया, ये सब सब के सब मर गए, सब बिल्डिंगें टूट रही हैं, सब खत्म हो गए, चल ऊपर जा रहे हैं। बाबा लेने आया, ऐसे बार बार रिहर्सल करो। हम हॉस्पिटल में भी क्या करते हैं, इमरजेंसी की बार बार मॉक ड्रिल करते हैं, आर्मी वाले भी मॉक ड्रिल करते हैं, करते ना अभ्यास करते हैं ना, लड़ाई के अभ्यास करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी अभ्यास करते हैं, डिजास्टर नहीं होता है आर्टिफिशियल अभ्यास करते हैं, तो हमारा भी तो होने वाला है ना, तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, करोगे ऐसे? ये ज्ञान चिता में ही आता है ना, तो बार बार, क्योंकि बाबा ने कहा अब घर जाने का समय, अब घर जाने का समय, मौत सामने खड़ी है ना, तो बार बार ये अभ्यास करो कि अभी घर जाने का समय। जब उपराम वृत्ति बनी, अनासक्त वृत्ति बनी, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, अब ये कुछ रहने वाला नहीं है, हमारे कुछ काम का नहीं है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब बेहद की यहां से डिटैच हो जाएंगे, बेहद अनलिमिटेड डिटैचमेंट, तब हमारा त्याग होगा, तब रियल त्याग होगा, तब हमारा त्याग माना, तब देहभान का त्याग हो जाएगा, तब देह के संबंधों का त्याग हो जाएगा। मुझे किसी से कुछ इच्छा नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, बहुत थोड़ा सा लिमिटेड, कोई खाना बना के दे नहीं दे कोई बात नहीं, मैं ऐसे मूंग के दाने खा के चलो हो गया, पेट भर गया, चलो थोड़ा ऊपर से थोड़ा पानी पी लिया, कोई खाना मतलब मुझे बना के दे मैं तब खाऊं, नहीं तो अपने आप थोड़ा सा बना लिया, वो लिया दलिया निकाला, ओट्स आते ना, पानी डाला, हल्का सा नमक डालो, बस हो गया, नमक डाल के बस, कुछ डालने की जरूरत नहीं, और कुछ भी इसमें मिर्चे डालू मसाले डालू कुछ नहीं, बस हल्का सा नमक डाला चम्मच से खा लिया, क्या ख्याल है? इतना सहज बनो है ना, सरल बनो, नहीं मुझे तो ये भी होना चाहिए, अभी अभी ये होना चाहिए, अभी अभी देखो छोले भटूरे मिलेंगे, अभी ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, अभी वो खाऊंगा, अभी खाऊंगा, वो खाते खाते ही अगर चले गए तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमें समझना है कि बहुत गहराई से इसमें उतरना है, उपराम वृत्ति आ सकते, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति है ना, सब चीजों से, संबंधों से, पदार्थों से, स्वभाव संस्कार से, सबसे उपराम वृत्ति। जब यहां से अटैच होंगे तो वहां अटैच, फिर तपस्या होगी, अभी तपस्या शुरू नहीं हुई है, तब तपस्या, बिना त्याग के तपस्या हो नहीं सकती है, और बिना तपस्या के सेवा नहीं हो सकती है। सेवा क्या होती है? सेवा अभी अभी तो सिर्फ 0.1% सेवा हुई है, कितने परसेंट हुई है? 0.1%। अभी कितने कितने 750 करोड़ में कितनी कितनी आत्माएं बन गई बताओ, ब्राह्मण कितने बने, बाबा का मैसेज कितने करोड़ तक पहुंच गया है? आप किसी 100 लोगों से पूछ के देखो, शहर में चौक पे सड़क पे जाके ब्रह्म कुमार के बारे में क्या जानते हो, क्या बताएंगे? स्कूल कॉलेज में जाके बात करो बच्चों से, पूछ के देखना जरा, पूरी ट्रेल कोई मतलब थोड़ी सी बात बता दे, हाँ नाम तो सुना है, बस इतना ही नाम तो सुना है, ऐसे बताएंगे, वहां प्रोग्राम एक बार सुना था, वहां प्रोग्राम हो रहा था। तो ये गहराई में जाओ कि सबको पता लगना चाहिए बाबा आया है, चाहे बीके बने चाहे नहीं बीके बने, वो कहे तो मेरा बाबा, तो सब कहेंगे ना अंत में। तो ये सारी तपस्या, जब हमारी तपस्या योग नहीं बन जाएगी ना, जब विक्रम विनाश हो जाएंगे तो फिर तपस्या होगी, तो फिर सेवा होगी, वाचा सेवा नहीं मनसा सेवा होगी, है ना। तो हमें क्या करने का है, ये स्टेप याद कर लो, उपराम वृत्ति, ये मुरली का जितना मनन चिंतन मंथन करते जाओगे, सिमरन करते जाओगे, निरंतरता जब इसमें आएगी, जब इसमें निरंतरता सदा का भाव आएगा, तो फिर हमारे अंदर क्या होगा, फिर उपराम वृत्ति पैदा होगी, है ना। बाबा की मुरलियां पढ़ पढ़ के अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, साकार मुरलियां पढ़ो, यही सारा दिन लगे रहो, देखो मेरी जेब में कितनी मुरलियां हैं, हाँ देखो मेरी मुरली में जेब में अभी भी देखो 4-5 मुरली तो होंगी, जो मुरली मेरे को अच्छी लगती है वो जेब में रख देता हूँ, है ना। कितने पिछले 3 संडे की तो मुरलियां मेरी जेब में है ना, पिछले 3 संडे की मुरलियां है ना, एक आज की मुरली है ना। तो मेरे को सारा दिन ये लग रहा था, मैं इस मुरली के मेरे को पॉइंट अभी पक्का नहीं हुआ, ये मुरली का मेरा पॉइंट पक्का नहीं हुआ, ये मुरली का मेरा पॉइंट पक्का, मेरा रटना की बात नहीं है, मेरे जीवन में नहीं आया अभी, पूरी तरह जीवन में नहीं आया, अभी पूरी तरह जीवन में नहीं आया, मेरे जीवन में आना चाहिए ना। 108 की माला का दाना मरने के लिए पता क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बताओ? एक बड़ी दादी ने बताया था मुझे, हाँ जी नहीं, बाबा ने कहा, दादी ने कहा था, 8 की अष्टरत्न बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अष्टरत्न माना जो उसको श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है, हर श्वास में उनकी मुरली बजती है। दादी जानकी को जाके देखो, दादी प्रकाश मुनि को देखते, हमने बहुत गहराई से देखा, उनकी हर श्वास में मुरली बजती थी, बाबा ने ये कहा, बाबा ने, दादी को देखो, दादी 102 साल की है, शाम को आके बाबा की मुरली पूरी रिवाइज कर देती है, अभी कम करती है, पहले तो सारी मुरली रिवाइज कर, अभी तो कम बोलती है बहुत, किंतु फिर भी बाबा की मतलब उनको वही बाबा ही बाबा रहता है, बाबा ही बाबा रहता है, कितने प्यार से पापा बोलती है ना। तो ये अष्टतन आत्माओं की निशानी है क्या? एक दिन में 16,000 सांस होते हैं, 16,000 बार उनकी मुगली अंदर बजती रहती है ना, बाबा बाबा बजता रहता है। रात में 2 बजे उठा के देखो ना, 12 बजे तो क्या? फिर बोलेगी बाबा बाबा, सारा टाइम बाबा बाबा ही कहते रहते हैं। आप कितनी बार बाबा बाबा करते हो दिन में है? और बाबा दादी ने कहा 100 की माला में आना तो क्या करना पड़ेगा? 100 की माला में आना तो आपको क्या करना, दिन में 100 बार मुरली रिवाइज करनी पड़ेगी। कितनी बार? 1 घंटे में 6 बार, हर 10 मिनट में। हम माला क्या दाना बनाना चाहते हैं, हाथ उठाते हैं सब, उसका कीमत कितनी है पता नहीं है ना? कीमत देंगे इतनी? बाबा बाबा की मुरली बना, बाबा बाबा की मुरली बाबा की है ना, बाबा का लव लेटर है, इसको देखने से कौन याद आएगा? स्थूल तरीका है ना बाबा को याद करने का, भी नहीं आएगा। लेटर देखते कौन याद आएगा? जिससे जिसने लेटर भेजा है वही याद आएगा। तो बाबा याद आएगा नहीं आएगा? तो ये इसके साथ पक्का। और 16,000 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम 8 बार, एक दिन में 8 पैर होते हैं ना, कम से कम 8 बार मुरली रिवाइज करनी पड़ेगी। कितनी बार? 8। ठीक है। और 9 लाख की माला में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज क्लास में, सुबह क्लास में, सारे काम छोड़ के, घर के सारे काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, बच्चों को बीबी को कुछ भी आए नहीं आए, आप पहुंचो क्लास में बैठ के मुरली सुनो। जिसने जिसने 7 बजे की बजाय 9 बजे मुरली सुनी उसका क्या होगा? 2 जन्म लेट। जितने घंटे मुरली में लेट उतने दो उतने जन्म। खाना पीना खा के आए ना वो, तो खाना पीना जब सत्युग का खाना पीना हो जाएगा ना, दो सत्युग असली खाना पीना क्या है? पहले जन्म में दूसरे जन्म में होगा, श्री कृष्ण के साथ होगा, वो खाना पीना तो पूरा हो गया ना, तो आप 2 जन्म लेट आओगे सिर्फ, ज्यादा देर लेट नहीं आओगे। 11 बजे आओगे तो कितने जन्म लेट? 4 जन्म लेट। चार दादी निकल चुके होंगे, ठीक है। 12 शाम को आए तो सीधे 12 जन्म लेट है ना, समझ गए? अब फार्मूला याद रख लेना। सबका साधन क्या है? मुरली, ठीक है, बाबा की मुरली का ज्ञान है जी। ये पक्की मुरली की लिखी हुई बातें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मुरली की बात है नहीं टीचर, मैंने बताओ मुरली में लिखा है, नहीं लिखा है ऐसा? अव्यक्त मुरली में सब लिखा हुआ है, साकार मुरली में, बाबा की मुरली में। डर तो नहीं गए आप? तो देख लेना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, और मेहनत है ना, मोहब्बत है ना, मेहनत नहीं है ना, मोहब्बत में मेहनत कभी लगती नहीं है ना। एक माँ को कभी लगता नहीं है कि उसका बच्चा खाना बनाता है ना, बच्चे का बच्चा 12 बजे रात को कहता है मम्मी मेरे को भूख लगी। हाँ जी, कहाँ पे जाओ वो तो कैसे भी करके करो ना। अब आप ऐसा करो, शाम को मुरली सुनो, फिर सुबह सुबह नहा, सुबह सुबह 4 बजे योग करके ना, जो मुरली नोट करके लाए ना उसको पहले उसको पढ़ो, और जाते टाइम सेंटर पे 5 मिनट बाबा कमरे में जाके बाबा को बोल के जाओ, बाबा मैं मुरली पढ़ के आई हूँ, है ना। फिर सेंटर, फिर क्लास स्कूल में जाओ, ठीक है, फिर आपको पास हो जाएंगे, है ना, ठीक है। पर लगन लगाओ ना, है ना, लगन लगाओ। देखो मेरा स्कूल था, मेरा हॉस्पिटल था 8:30 बजे, हमारा छोटा बच्चा था 3 साल का, तो हम लोग क्या करते, 4 से 5 4 से 5 योग करते थे, योग करके दोनों मिलकर खाना बनाते थे। मैं उसमें MD कर रहा था तब की बात, दिल्ली में की बात बता रहा हूँ। फिर खाना बनाते थे, मैं कम बनाता था, वैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, वो खाना तो वही बनाते थे, पर ज्यादा काम वही करते थे, है ना। थोड़ा बहुत मैं ऐसे थोड़ा आलू काट दिया, कभी कुछ कर दिया, तो नहीं तो कुछ ऐसे नाम मात्र काम, 90% उनका, 10% मेरा, है ना। तो वो बनाते थे, सारा कुछ पैकिंग किया, और बस फिर हम लोग क्या करते थे, फिर हम स्कूल में छोड़ते थे बच्चे को, 7:45 का उसका स्कूल था, स्कूल छोड़ा और फिर हम सेंटर पे सीधे, है ना। सेंटर पे ऐसा देर से नहीं, बस टाइम पे पहुंच जाते थे, 7 बजने पे 2-3 मिनट पे पहले पहुंच जाते थे। 7 से 8 मुरली सुनी, मुरली सुनते ही घर आते थे, खाना बना के सब्जी बनी होती थी, चपाती भी बना के जाते थे कई बार, चपाती नहीं तो आके वो गरम गरम चपाती खा के, और 8:15 पूरा हो गया, 8:20 तक पूरा हुआ, 8:30 मुझे अस्पताल में पहुंच गया। तो जहां लगन है ना, प्रायोरिटी आपको देखनी है, आपको किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, बच्चों को प्रायोरिटी देते हो, खाने को प्रायोरिटी देते हो, है ना, किसको प्रायोरिटी दे रहे हो? आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, टॉप प्रायोरिटी, है ना, अपने आप को, बाबा को टॉप प्रायोरिटी दो। तो बाबा की मुरली सुनने सेंटर पे जाओ, 9 लाख में आना है सभी को, जिनको 9 लाख से बाहर आना हाथ उठाओ, 9 लाख से बाहर आना है, सब 9 लाख में आने वाले, सभी क्लास में जाते रोज सुबह 7 बजे पक्का। जो क्लास में सुबह नहीं जाते, नहीं हाथ कोई नहीं आता, तो हाथ नहीं आते हैं जी, चंडीगढ़ में जल्दी 6 बजे जाओ, है ना, तो 5:45 शुरू हो जाओ, 5:45 जाओ ना, उसके बाद तुम अपना काम करो। बच्चे स्कूल जाएंगे ना, कोई हर्जा नहीं है, पति कहां स्कूल पे जाएगा, काम पे जाए नहीं हर्जा नहीं है, काम पे जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ेगा, 2 गाली घर में जाकर खा लेना, है ना, किंतु आप अपनी ड्यूटी भी मत छोड़ो। सुना, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को भी बहुत गालियां देते थे घर में कई बार ना, पहले अभी तो नहीं देते, है ना, अभी तो सब साथ बन गए, साथी बन गए, लगन लगाओ, दुनिया जो मर्जी करे, जिसको किसी से प्रेम होता है ना, भले पीछे से कुछ भी होता रहे, परवाह नहीं करते हैं, है ना, परवाह करते क्या, माँ बाप क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो भाग जाते हैं, है ना, घर के पैसे लेके भी भाग जाते हैं ना, तो आप तो पैसे लेके तुमसे भागने को कह रहा हूं मैं, आपको कह रहा ऐसे ही भाग जाए कर रोज मुरली पे ना, बहाना करके भाग जाओ, ठीक है, ऐसी लगन की अग्नि जब बनेगी तो योग अग्नि बन जाएगी, ज्ञान चित्ता पर निरंतर रहो, अपने आप ही योग अग्नि जाएगा, लकड़ी जला दी उसमें अपने आप गर्मी पैदा हो जाएगी, आग लग जाएगी, फिर सारे विक्रम भस्म हो जाएगा, विक्रम भस्म होंगे तो फरिश्ता बनेंगे ना। 63 जन्मों के पाप कर्म है, कितने, 1-2 जन्म के नहीं है, जब 8 घंटा हमारा योग 8 घंटा ऐसा करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो उसका असर 16 घंटा रहेगा, 16 घंटा हो गया, और बाबा को लेटर लिख के चार्ट भर के मुरली पढ़ के सोएंगे ना, तो 8 घंटे जो बाबा की 6 घंटे सोएंगे ना, बाबा की याद में बीत जाएगा, वो भी योग निद्रा हो जाएगी, निद्रा, ठीक है। तो 24 घंटा हमसे विक्रम होगा नहीं, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी मुरली सुनी, थोड़ा मनन चिंतन किया, फिर किसी को फिर वो भूल गए, फिर देवभान में आके काम कर विक्रम कर लिया, तो इधर 100 रुपए कमाए 100 रुपए गवाए, है ना, कई बार तो 100 कमाते हैं 200 गवाते हैं, शाम को देखो तो खाता नेगेटिव 5,000 रुपए, है ना, कमाया गवाया, इससे स्थिति वही रहती है, वही की वही, 10 साल पहले भी गुस्सा करते थे आज भी करते हैं, है ना, 10 साल पहले चिंता थी आज भी चिंता है, 10 साल पहले उदास हो जाते थे बीच बीच में आज भी उदास होते हैं, 10 साल पहले भी नींद नहीं आती थी अभी 10 साल बाद भी नींद नहीं आती, है ना, कहां पहुंचे, सॉरी हार्ड बातें बोलने के लिए, अभी लगन लगाओ कि शाम को देखो शाम तक मेरा कितना जमा हुआ, इसमें हमारा हीरो का बिजनेस है, है ना, तो करोड़ों के हीरे कमाते, पैसे कमाई भी होती है, करोड़ों जाते भी हैं, राइट, अटेंशन रखो, इसलिए कमाओ खाली, गवाओ नहीं, क्या करना है, कमाना है गवाना है, सच्ची कमाई ये है, बाकी सारी कैसी कमाई है, झूठी कमाई है, तो निरंतर देखो, बस लास्ट में मैं बोल देता हूं, हमारा बाबा परम सत्य है, अब निरंतर ऐसे बाबा जो एवर सोल कॉन्शियस है, ऐसे बाबा के साथ पूरा संगम, थोड़े से साल बाकी है, 1.5-2 साल बाकी है ना, 2020 है ना, जैसे 2020 माने 2020 का मैच खत्म है ना, तो अभी जब 2020 का मैच खत्म, आखिरी ओवर चल रहे हैं, आखिरी के 2-3 ओवर बाकी है ना, तो अभी जैसे ओवर खत्म होगा उसके बाद तो चांस नहीं मिलेगा, तो अभी जो है क्या क्या बता रहा था मैं आपको, अभी परम सत्य है, तो ऐसे परम सत्य बाप के साथ निरंतर कंबाइंड रह के, निरंतर कंबाइंड रह के क्या बनना है, आधा कल्प के लिए सदा सत्य बनना है, सदा सत्य माना आधा कल्प के लिए सदा सोल कॉन्शियस बनना है, मेरा बाबा परम पावन है, ऐसे परम पावन बाप के साथ निरंतर कंबाइंड रह के, जो सदा ही एवर पूज्य एवर क्या है, पावन है, ऐसे बाप के साथ अभी 2 साल कंबाइंड रह के क्या रहना है, निरंतर कंबाइंड रह के क्या बनना है, आधा कल्प के लिए सदा पावन बनना है, ठीक है, मेरा बाबा परम शांत है, मतलब असोचता है ना, उसको पास का चिंता ना भविष्य की चिंता है, ऐसे परम शांत बाबा के साथ कंबाइंड रह के, निरंतर कंबाइंड रह के क्या करना है, आधा कल्प के लिए क्या बनना है, आधा कल्प के लिए सदा शांत बनना है, माना असोचता बनना है, असोचता माना हमें सत्य में सोचते हैं क्या, जो 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 होने वाला होता है अपने आप हो जाता है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सोचते नहीं है, देवता कभी सोचते हैं क्या, देवता सोचते ही नहीं है, और फिर मेरा बाबा परम रूहानी प्रेम है ना, ठीक है, मेरा बाबा परम रूहानी प्रेम है ना, भीस मतलब वो सबको एक्सेप्ट करता है ना अनकंडीशनली, तो ऐसा मुझे क्या, ऐसे बाप के साथ कंबाइंड होकर मुझे क्या करना है, आधा कल्प के लिए क्या होना है, सबके लिए सदा रूहानी प्रेम बनना है, सदा के लिए सबके साथ मुझे एक्सेप्ट करना है, कोई कैसा भी हो, वहां भी रंग बिरंगे लोग होंगे, देवता भी रंग बिरंगे सारे जैसे नहीं होते, उसमें भी ऊपर नीचे होगा ना, सब तरह के लोग होंगे, तो वहां भी हमें किसी की संकल्प ना चले, सबको स्वीकार करें, सबको बेहद का प्यार दें, सबकी बेहद की केयर करें, गुणों से खुशबू से सबकी पालना करें, है ना। तो ऐसा करना, मेरा बाबा परम सुख है, परम अतीन्द्रिय सुख है। तो ऐसे बाबा से अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या होता है? नो डिजायर्स। जहां इच्छा है वहां कुछ सुख नहीं है, जहां इच्छा मात्र अविद्या है वहां पर सुख है, अतीन्द्रिय सुख है। तो मुझे अब सब इच्छाएं खत्म करके सिर्फ बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहने का, तो मुझे आधा कला फिर मैं अतीन्द्रिय सुख के रहूंगा, सत्यता में ना? मेरा बाबा परम आनंद है, है ना। मुझे क्या करना है? ऐसे बाबा से कंबाइंड रहकर क्या करना है? आनंद माना बियॉन्ड, गोइंग बियॉन्ड, बियॉन्ड माना देह और देह की दुनिया के पार, आत्मा परमात्मा के प्यार में खोई रहे, उसमें लवलीन रहे, ऐसी स्थिति। तो मुझे आधा कल्प उस स्थिति में रहना है। अगर मैं निरंतर आप कंबाइंड होगा तो ही वैसा बन सकता हूं। मेरा बाबा परम सर्वशक्तिमान है। ऐसे बाबा से कंबाइंड है कि मुझे आठों शक्तियां इतनी भर लेनी है कि आधा कल्प मुझे क्या बनकर रहना है? सर्वशक्तिमान बनकर रहना है। मेरा बाबा सातो एनर्जी का बैलेंस है ना, उसमें सातो एनर्जी बैलेंस में है। ज्ञान भी, जितना ज्ञान है उतना ही पवित्रता भी है, जितनी पवित्रता उतनी शांति भी है, उतनी शांति उतना प्रेम भी है, जितना प्रेम है उतना सुख भी है, उतना आनंद भी है, उतनी शक्तियां भी है। हम में क्या है? किसी में ज्ञान बहुत ज्यादा है, पवित्रता कम है, किसी से लगाव हो गया है, पवित्रता नहीं है। लगाव है तो पवित्रता नहीं है, झुकाव है, किसी के प्रभाव में आ गए तो लगाव पवित्रता नहीं है, है ना। तो ज्ञान तो बहुत है पर लगाव झुकाव में फंसे हुए हैं। किसी में पवित्रता भी है कि तो शांति नहीं है, कोई ना कोई पास्ट की बात आके कुरेती रहती है अंदर से, उसको याद आ, भविष्य की चिंता लगी रहती है। तो शांति भी इतनी चाहिए, और जितनी शांति उतना ही प्रेम। किसी को स्वीकार नहीं किया है, किसी को वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसे करके उसको निगलेक्ट किया हुआ है, किनारा किया हुआ है, तो वो फिर बैलेंस नहीं ना। फिर अतीन्द्रिय सुख माना एक बाबा के साथ का सुख, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति। जब ऐसी स्थिति होगी तो अतीन्द्रिय सुख है। तो जितना प्रेम उतनी अतीन्द्रिय सुख, जितना सुख उतना आनंद, लवलीन स्थिति, और जितना सुख उतनी अशक्तियां। तो ऐसा सातो एनर्जी का बैलेंस बनेगा ना, तो बनेगी अग्नि। अग्नि कब बनती है? जब सातो एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। सूखी लकड़ी जो होती है, लकड़ी आग जोर से लगती है, और गीली लकड़ी होगी ना, बीच में एक भी गीली लकड़ी होगी ना तो धुआं देगी, है ना। जैसे मान पवित्रता कम है, शांति कम है, गीली लकड़ी है तो वो धुआं देगी, फिर आग नहीं बनेगी, फिर धुएं वाली आग होगी, उसमें विक्रम विनाश नहीं होंगे। ओके, कुछ ना कुछ विक्रम रह जाएंगे, लकड़ी गीली रह जाएगी ऐसे कैसे, फिर वो दुख देगी। ओके, तो क्या करेंगे? काम चिता से उतार के बाबा ने हमको ज्ञान चिता पे उठाया। अब ज्ञान चिता पे निरंतर रह के मुरली को कितनी बार करना है? 100 बार। कितनी बार है? 100 की माला में सभी को आना ना, तो 100 बार एक एक लाइन को, एक एक लाइन बार बार, मतलब पूरी मुरली नहीं, एक एक लाइन, एक एक लाइन 10-10 मिनट में निकाल के पढ़ते रहो। जेब में मुरली रखना शुरू करो, चार्ट रखना शुरू करो। दो चीज जेब में रखने से बहुत ताकत आएगी, है ना, अटेंशन रहेगा, और फिर योग अग्नि जागृत हो जाएगी। सातो एनर्जी का बैलेंस कर दो, हीलिंग एनर्जी बन जाएगी, ज्वाला स्वरूप योग हो जाएगा, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर बाबा के साथ वापस साथी बन के जाना है। क्या बन के जाना है? के बराती बन के जाना है साथ। ओम
जोर दाल ताली। बहुत 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 आभार। कैसे विक्रम विनाश करके सजनी बन के साथ जाना है, सबके बुद्धि के द्वार खोल दिए, और बाबा के नजदीक जाने में बहुत हेल्पफुल होगा, भट्टी सफल होगी। अभी 1 मिनट सिर्फ साइलेंस करेंगे।